सब लोगों को मेरे नमस्ते। और आज हम सब लोग युग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। अब पापा आप सुनाओ।
थैंक यू युग। आज कौन सी कहानी सुनेंगे हम?
ज्ञानी चोर का नेक्स्ट एपिसोड।
हाँ, बहुत दिन से हमने ज्ञानी चोर का नेक्स्ट एपिसोड नहीं किया है। तो लास्ट तक हमने जहाँ सुना था, ज्ञानी चोर ने अपने आप को कैद करवा लिया था आदिल खां के किले में, और वहाँ से दूत गया था दिल्ली, जो उसका सबसे तेज घुड़सवार था, उसकी खबर को कन्फर्म करने के लिए। और ज्ञानी चोर ने अपने निकलने का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर मानसून आना था, बड़ी बारी बाढ़ आएगी, बारिश होगी, उससे बाढ़ आ सकती है। ना भी आए तो भी उसने अपने आदमियों को कह रखा था कि इस एरिया में बाढ़ ज़रूर आनी चाहिए, जैसे उसने ट्रेंचेस खोद रखे थे, है ना। तो वही हुआ, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। और ऐसा बिल्कुल होता है जब आप नेचर को समझ लेते हो और उसके इशारे समझ के आप चीज़ों का अनुमान लगा लेते हो। जैसे युग, आप कैसे पता लगा लेते हो कि स्प्रिंग आ गया है? हाँ, जब भी आप देखोगे स्प्रिंग आता है यानी वसंत ऋतु आती है, तो आप देखोगे सर्दी के बाद में आपको सबसे पहले निशान जो मिल जाएंगे पेड़ों पे मिल जाएंगे। आप उन पे छोटे छोटे नई कोंपलें, छोटे छोटे से फूल, नई पत्तियाँ, बहुत बारीक बारीक से बसंत आने की शुरुआत होती है। वो तो नेचर को अपने आप पता लग जाता है। लगभग 2 वीक पहले आप इजीली पता लगा लोगे कि बसंत आ गया, इफ़ यू हैव अर्ली स्प्रिंग और नॉट, और इफ विंटर इज़ गॉन और नॉट। तो ऐसे ही ज्ञानी चोर ने भी सारा अनुमान लगा रखा था। बड़ी भारी बारिश हुई ऊपर पहाड़ों पे, बारिश हुई तो बहुत सारा पानी आया नदी में। और पहले क्या करते थे, किले में पानी लाने के लिए नहरें खोदी होती थी। क्यों? इतने सारे लोग रहेंगे, सेना रहेगी, घोड़े जानवर सब रहेंगे, तो पानी तो चाहिए ना सबके लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए। कुछ कुएं खोदे जाते थे और कुओं में, कुओं के अंदर से बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जाती थी। ऐसी ही एक सुरंग आज भी अगर आप जाओगे तो कहते हैं आगरा के किले में थी, जो वहाँ से दिल्ली के लाल किले तक जाती थी, कि वंदिती है, कई बातें हैं। लेकिन ज्ञानी चोर की बावड़ी पे अगर आज भी जाओगे तो वहाँ पे बड़ा सा कुआं है, और वहाँ पे बताते थे कि जब कोई उसे पकड़ने आता था, अगर कभी बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाए, तो वो लगभग 3 मंजिल ऊँचा, 3-4 मंजिल ऊँचा, लगा कि 3-4 फ्लोर्स इतनी हाइट, तो वहाँ से वो जंप कर जाता था कुएं के अंदर। और कई बार तो पूरा सामान लेके, कवच लेके, या जो भी उसने पकड़ रखा है वेट लेके, सर्टेन 40-50 किलो तक का वेट, ऊपर से इमेजिन करो जंपिंग फ्रॉम 4-5 फ्लोर्स 40-50 फीट तक भी, तो ऊपर से जंप करता, और जंप करे उसे पता था, अंदाज़ा लगा रखा था कि इतने ऊपर से कूदूंगा तो मैं कितनी गहराई तक जाऊंगा। और नीचे कुएं की उस गहराई तक उसने बांध रखी थी बेलें, बेल जैसे रस्सी होती है ना, ऐसे लोहे की, आयरन की, और उनको पकड़ के वो अपनी सुरंगों में निकल जाता था कि तैर के दूसरी तरफ। इतनी देर सांस रोकने की उसने प्रैक्टिस लगभग कर रखी थी कि इफ आई जंप कि मैं 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक सांस रोक सकूं पानी के अंदर। अब मान लो ऊपर से कूदा है, तो जो सिपाही या सेना जो पीछे पड़ी है वो तो यही सोचेंगे ना कि भाई अब ऊपर आएगा, है ना, पानी में कोई कितनी देर रह सकता है। वो वेट करते रहते और ज्ञानी चोर कभी आता ही नहीं, फिर सोचते वो मर गया। फिर ढूंढते रहते ना उसकी कभी लाश मिलती। तो ऐसे उसने बड़े ही चतुराई से अपने एस्केप के निकलने के तरीके निकाल रखे थे। इसकी भी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको कि कब कब ऐसा हुआ, कब कब उसने ऐसे जंप किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मानसून आई, नदी में बाढ़ आई, तो उसने अपने आदमी से कह भी रखा था कि यहाँ से जो है नदी का एक मुहाना तोड़ देना, ताकि पानी नीचे तलहटी में पूरे किले तक जाए और वहाँ पे बाढ़ ही बाढ़ आ जाए पूरी, और उस बाढ़ की आड़ में ज्ञानी चोर ने नीचे नीचे अपनी कोठरी के नीचे तक सुरंग खुदवा ली थी। तो उसमें बाढ़ आई बहुत भयंकर, उनका सारा तो अनाज, सारा बारूद, सारी चीज़ें खराब होगी, आधी चीज़ें बहेगी, जानवर भी बह गए, तो बहुत नुकसान हुआ। और ज्ञानी चोर ने क्या किया, उस बाढ़ में वो वहाँ से निकल गया। अब इससे क्या हुआ, जो नागिन आ रही थी, यानी जो बड़ी तोप कोंडाना भेजी जा रही थी, उसकी सपोर्ट सप्लाई के लिए जो आदिल खान ने तैयारी कर रखी थी, उनका सारा सपोर्ट सिस्टम ब्रेक डाउन कर दिया। और उधर से शिवाजी राजे ने क्या कर रखा था, तानाजी को लेके, तानाजी ने चढ़ाई करी थी, पर शिवाजी राजे ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि कोंडाना का किला हमें वापस लेना है। तो बाढ़ में ज्ञानी चोर गया निकल और अपनी कोठरी में से जो उसने सुरंग द्वार रखी थी और बाढ़ का फायदा लेके निकल के वो पहुंचा शिवाजी राजे के पास। और शिवाजी राजे को उसने महल का पूरा मैप बता दिया कि भाई इतने एरिया में से इस तरह का महल बना हुआ है, इतने सारे सिपाही हैं, ये उनके वेपन हैं, सारी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जो थी उसने पूरी लेख कर दी, बता दी। तो उधर से जब शिवाजी राजे ने अपने छोटी सेना भेजी और गुरिल्ला युद्ध कर करके कुछ और भी उनको बर्बाद कर दिया, कुछ तो उनकी फ्लडिंग में नुकसान कर दिया था सारा उनका, और ऊपर से फिर ऐसे गुरिल्ला हमले कर करके उनकी शक्ति को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। अब आदिल साहब इससे बड़ा परेशान हो गया था कि यार इस आदमी ने तो ये मेरी नाक में दम कर दिया बिल्कुल, इसको तो इसी के तरीके से जीतना पड़ेगा, इसको आप पावर से नहीं जीत सकते, इसको तो आप चतुराई से ही जीत सकते हो। तो उसके लिए उसने क्या किया, पहले पगला खान भेज दिया था, वो मर गया था, है ना, है योगी, पगला खान और सौ पठान लेके निकले ज्ञानी तेरी मौत का फरमान, उनका क्या किया था, उनके कान काट लिए थे कि पगला खान और सौ पठान कटा बैठे हैं कान, और भी अगर हिम्मत बची है तो आने मिलो सुल्तान, तो वो भी हो गया, तो वो निकाम किया। अब आदिल शाह ने सोचा कि यार इसके लिए मुझे कोई ना डिस्गाइज में एक स्पाई तैयार करना पड़ेगा जो बहुत चतुर हो। तो उसने एक सूफी को प्रिपेयर किया। सूफी क्या होते थे, जो मुस्लिम शासक होते थे ना, ये उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ पे भेदभाव है, या फिर आप भेदभाव को बढ़ावा दो, गरीब अमीर का भेद है उसको यूटिलाइज करो और अपना इस्लाम का प्रचार करो, लोगों को मुस्लिम बनाओ। कैसे, या तो मार के करते थे, या फिर क्या कहने लगे कि नहीं भाई अल्लाह की ने इनमें तो सब एक हैं और हम आपके साथ बैठ के खाएंगे, भाई हम तो शांति का मजहब, प्यार की बातें ऐसे करें, झूठी मूठी बातें बना के अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। और वो उन सारे ट्रेन वहाँ से किए जाते थे, और वो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे ना उनको टारगेट करते थे कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे अगर तुम हमारे भाई बन जाते हो, है ना, तुमने एक अपना ईमान ले आओ, इसके बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, नहीं तो तुम लोग तुम्हारी लाइफ बेकार है। तो ऐसे कर करके बहला फुसला के उन्हें मुस्लिम बना लेते थे। तो उसने ऐसे एक सूफी को पकड़ा और कहा कि तू, तेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, और तू जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ले गया कि इसका कैसा नेटवर्क है, कौन इसकी सपोर्ट करता है और कैसे हम इसको पकड़ सकते हैं। यू बी द स्पाई इन डिसगाइज एंड फाइंड आउट अ वे टू कैप्चर दिस गाय। दैट वाज अ जॉब गिवन टू हिम। वो सूफी ने क्या किया, बड़ी सी दाढ़ी बना ली और एक जैसे होते हैं ना भिखारी होते हैं जो, और वो गाते रहते हैं और मांगते रहते हैं, तो ऐसे वो सूफी का वेश बना के वो घूमता रहा गाता दिन भर। लोगों ने समझा कि भैया कोई पागल आ गया है या कोई, अब फिर धीरे धीरे वो अच्छी बातें करने लगता कि नहीं है तो कोई साधु है संत है, और बताया कि मैं तो ईरान से आया हूँ, सूफी हूँ, मैं तुम्हें मेरे लिए नए संदेश, नई दुनिया बनाने के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ये करूंगा। ऐसे उसने अपना लोगों के बीच में घूमना फिरना शुरू किया, जहाँ मिलता वहाँ खाता, सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करता। उसने अपने लिंक बना लिए, लोग भी उसको कुछ लोग पसंद करने लगे, तो वो अपना नेटवर्क सेटअप कर रहा था और ऐसे में इंटेल गैदर करना की कोशिश कर रहा था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करता। उसने देखा कि भाई यहाँ पे देवी का मंदिर कहाँ होगा, क्यों? ज्ञानी छोड़ देवी का भक्त था, है ना, कि देवी का भक्त है तो यहाँ तो पूजा करने ज़रूर आएगा और उसके पुजारियों का आसपास के लोगों को ज़रूर पता होगा। तो उसने ऐसा ही किया कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में देवी की पूजा होती है, तो भैया मैं भी देवी की पूजा करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ आपके धर्म को, आपके बारे में। तो उसने मंदिर के पुजारियों से भी दोस्ती कर ली। अब ज्ञानी छोड़ तो अपने पक्का था भक्ति का, तो उसने तो आना ही आना था अष्टमी को या फिर नवमी को, क्यों नवरात्रे होते हैं ना, तो फिर अष्टमी को हम कढ़ाई करते हैं, नवमी कुछ लोग नवमी को कढ़ाई करते हैं, तो अष्टमी और नवमी जो थी दो दिन वो ज़रूर आता था। और ये बात सूफी ने भी पता लगा ली, तो उसने के दिमाग से काम लिया कि अगर मैं अभी अटैक करा दूंगा तो ज्ञानी चोर सतर्क तो होगा ही, हमेशा वो सतर्क रहता है, इस बार मैं वो नहीं करूँगा, इस बार मैं या तो इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा खाली, या फिर उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा, टू गेट क्लोज टू हिम, गेट टू नो हिम। ओके, और वही हुआ भाई। वो 8 के 8 दिन जब नवरात्रे चल रहे थे, वो सूफी रोज़ वहीं पे सारा दिन रहता, लोगों की सेवा करता और खूब भजन वो करता, बड़े वाह वाह होने लगी उसकी कि भाई ऐसा सूफी आया है कि देखो मुसलमानों की भी कितनी सेवा करता है, कितना वो करता है। और क्या कर रहा था वो सारा, इंटेल गैदर कर रहा था, उधर छलावा कर रहा था, ट्रैप था वो। तो ज्ञानी चोर ने एक बात बहुत अच्छे से कर रखी थी, समझ रखी थी कि ही वाज रेडी फॉर लाइफ। उसमें एक उसका रूल ये था कि व्हेन समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, नेवर ट्रस्ट इट। जब भी कोई चीज अगर बहुत अच्छी लगे बहुत जल्दी से, नेवर ट्रस्ट इट। कोई आदमी बहुत जल्दी बहुत अच्छा बने, बहुत मीठा बहुत प्यारा कोई आपका बने, नेवर ट्रस्ट इट, ट्रस्ट दैट पर्सन। व्हेन समबडी इज टू गुड डोंट ट्रस्ट, व्हेन समथिंग हैपन सीम्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू डोंट ट्रस्ट इट। तो बिल्कुल नहीं करता था, और यहीं पे सूफी निकलती करती, ही ट्राइड टू बी टू नाइस टू अर्ली। तो ज्ञानी चोर क्या था, उसका बैकग्राउंड तो चेकअप करवाना ही था कि भैया कौन है, क्या ईरान से आया है, अच्छा ईरान का क्या रास्ता। उसने भी उसके साथ में क्या था वो लगा दिया अपने आदमी कि भैया सूफी है तो इसके चेले बनने के लिए। सूफी भी सतर्क था कि यहाँ भी तू क्या कर रहा है, और ज्ञानी चोर भी सतर्क था। ज्ञानी चोर को ये तो गया कि भैया कुछ गड़बड़ है, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा, बट उसे ये नहीं पता था कि भी क्या गड़बड़ है और कहाँ हो सकती है। ये जस्ट ही कुडंट फिट द कनेक्शन कि उसका आदिल शाह के साथ कोई कनेक्शन होगा। तो उस दिन वो बड़ा भला बन अष्टमी को आया, यानी चोर भी उसने वो भी जाके इतना नाचे गाए एकदम अच्छा अच्छा इंसान सूफी। उसने कहा कि मैं तो बहुत पहुँचा फकीर से। ज्ञानी चोर आया और उसने देख लिया कि भाई है भी नहीं, बट दाल में कुछ काला है, आदमी कुछ ज़्यादा ही नज़दीक करवाने की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानी चोर ने कहा कि भाई, उसने पूछ लिया भाई आपको इतनी शक्तियाँ, आप इतने विद्वान कैसे। तो ज्ञानी चोर भैया तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसको सूफी को लगा हाँ हो सकता है कि भी इसका सोर्स ऑफ पावर ये नहीं है, इसका सोर्स ऑफ पावर तो गुरु है इसका, इसके पास सारी नॉलेज और सारी है, और बात भी सही है। तो बोले भाई आपके गुरुजी से तो मुझे भी मिला दो, मेरे भी दर्शन करा दो, मेरी भी लाइफ अच्छी बन जाएगी, मैं भी सीख लूँगा उनसे कुछ। तो ज्ञानी चोर ने कहा भी मेरे गुरुजी से सबसे नहीं मिलते, मेरे गुरुजी के तो भी आपको सख्त परीक्षा पास करनी पड़ती है और उसके बाद ही अगर वो आपको जज करते उन्हें सही लगता है तो ही आप मिल सकते हो। तो वो सूफी ने कहा कि भाई ना, इसका सोर्स ऑफ पावर तो निकालना ही निकालना है, इंटेल भी लेनी है और मुझे भी पावरफुल बनना है इसकी तरह। ये कैसे रूप बदल लेता है, कैसे इसको ज्योतिष की इतनी अच्छी विद्या आती है, कैसे इसको मानसून का इतनी सारी साइंस, इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज इसको कैसे हो सकती है, और या जिसको कोई बताता है सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है, इसके पीछे इसकी टीम हो। अब ये खुद ही कह रहा है तो मैं इसका विश्वास पात्र बन जाता हूँ पहले, और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं इसे हराऊंगा। सो गए योगी, योगी सो गया है। अब ये कैसे हुआ, क्या किया सूफी ने और ज्ञानी चोर ने, उसको कैसे टैकल किया, अब दोनों इंटेलिजेंस गैदरिंग, दो स्पाई आपस में कैसे भिड़ रहे हैं, इस चीज़ को हम अगली कहानी में सुनेंगे। ठीक है,
ठीक है,
गुड नाइट,
गुड नाइट,
बाय।